ओम शांति। ब्राह्मणों को जैसे तीन चीजें प्रिय है, कौन सी तीन चीजें? एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन। और मधुबन में आने के बाद चौथी चीज जो है वो न मिले तो क्या होगा? क्या होगा? होली नहीं बन पाएंगे। इसीलिए बाबा की इतनी मीठी प्यारी टोली मिलती है, जो हम मधुबन तो क्या, परंतु सेंटर पर भी मधुबन की टोली का एक कणा मिले, कितनी भावना से हम उसको स्वीकार करते हैं। तो ऐसे मधुबन महायज्ञ की टोली बनाने की सेवा में पर होते हुए भी, लौकिक पढ़ाई में तो आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया ही है, परंतु अलौकिक पढ़ाई में कितने न मेहनत करते हुए बाबा के दिल तक तनशीन, दादियों के दिल तक तनशीन, देश विदेश के भाई बहनों की आप ये टोली के द्वारा तो सेवा करते ही है, परंतु आपकी बोली भी इतनी ही शक्तिशाली है कि ऐसा कोई देश न रहा होगा कि जहां पर आतम भाई जी ने बाबा की सेवा के लिए न गए हो। तो आपकी विशेषताओं को बाबा ने भी स्वीकार किया और आपने स्वयं भी दिल व जान, सिख व प्रेम से बाबा के कार्य में उसको लगाते हुए इतना बढ़ाया है। इसीलिए हर समय जहां भी देश विदेश में भट्टियां होती है तो भट्टियों के कार्यक्रम में आपका योगदान सदैव रहता है। तीनों स्थानों की सेवाएं आप कर ही रहे हैं और साथ ही साथ यूथ विंग के भी आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में सहयोगी स्नेही बनकर युवा भाइयों में विशेषकर उमंग उत्साह बढ़ाने की आप सेवा करते हैं। हम देखते हैं जब बाबा की सीजन होती है, हर ग्रुप में बिजी होने के बावजूद भी खास युवाओं के लिए आप टाइम निकाल करके एक डेढ़ घंटे का क्लास भी कराते हैं। तो ऐसी बाबा ने बहुत महान विशेषताएं आप में भर दी है, इसीलिए हम क्या कहे आपको और क्या दे आपको, क्या दे हम गुलाब आपको, आप तो खुद ही रूहे गुलाब है। इन जुगनों की दुनिया में आप खुद ही अफताब है, अफताब है। और खुशी की बात यह है, हमारे महाराष्ट्र के है दीदी के द्वारा, संतोष दीदी की विशेष पालना ली हुई आप विशेष आत्मा है। नागपुर में ही आपको लौकिक पढ़ाई करते बाबा ने चुना है और दधीची ऋषि की तरह आप यज्ञ सेवा कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आज हमारे भाई बहनों को विशेष डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव भी कराएंगे और साथ साथ हमने विषय तो दिया है मनोबल एवं मनसा सेवा, तो आप गहराई से इन पर प्रकाश डालेंगे। आत्म प्रकाश भाई जी।
ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा, प्यारे बाबा ने पिछले सीजन में बार बार इशारा दिया है कि अभी समय की आवश्यकता है मनसा सेवा को बढ़ाते रहना, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे परिस्थितियां बिगड़ती जाएगी, समस्याएं बढ़ती जाएगी और अनेक आत्माएं शांति शक्ति की चाहना लेकर बाबा के बच्चों के पास आएंगे। तो मनसा सेवा करना अर्थात होल सेल स्पिरिचुअल बिजनेस करना, वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस करना। तो दादियां मनसा सेवा करती है, उनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। लेकिन हम जब मनसा सेवा करते हैं तो हमारे मन में किसी कोने में थोड़ा सा संशय होता है कि पता नहीं मुझे इस मनसा सेवा में सफलता मिलेगी या नहीं। इसका कारण है मनसा सेवा करने का साधन इतना पावरफुल नहीं है, इतना शक्तिशाली नहीं है। क्योंकि जितना पावरफुल मनोबल होता है उतनी सहज हमें मनसा सेवा में सफलता मिलती है। तो सोचने की बात है, हमारी दादियां है, हमारी बड़ी दीदियां है, उन्होंने क्या ऐसा पुरुषार्थ किया है जिससे उनको ये सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने यज्ञ के शुरू में बहुत कर्मणा सेवा की है, हड्डियों को दधीचि ऋषि की तरह सेवा में लगाया है, जिससे अनेक आत्माओं की दुआएं उन्होंने प्राप्त की हैं, जिसके द्वारा उनके वाणी में बोल में बल आया है। और ऐसे शक्तिशाली वाणी द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा ज्ञान रत्नों के द्वारा की, अनोखों की दुआएं प्राप्त की, जिससे उनकी मनसा शक्तिशाली बन गई। और शक्तिशाली मनसा से वो अभी बेहद की सेवा सफलता पूर्वक कर रहे हैं। कर्मणा के द्वारा कुछ सैकड़ों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, वाचा के द्वारा कुछ हजारों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, और मनसा के द्वारा लाखों करोड़ों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। तो मनोबल को हमें बढ़ाना जरूरी है। दो चार साल के बाद आप देखना मनसा सेवा का ही बोलबाला होगा। बाबा ने पिछले सीजन में भी कहा, वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि वायुमंडल ऐसा होगा, माहौल ऐसा होगा, न हम ज्ञान सुना सकेंगे न सुनने वाले सुन सकेंगे। माया के सीरियस पेशेंट हमारे सामने आएंगे, शक्तिशाली संकल्प रूपी इंजेक्शन के द्वारा उनको जो चाहिए शांति शक्ति देनी होगी। तो मनोबल को बढ़ाने के लिए 5 बातों पर विशेष अभ्यास करना जरूरी है। पहली बात, सदा स्वमानधारी होकर रहने का अभ्यास बढ़ाते चले, क्योंकि जब हम स्वमान के सिंहासन पर बैठते हैं तो आत्मा में जो सुसुप्त शक्तियां हैं, डॉर्मेंट पावर है, सोई हुई शक्तियां हैं, वो शक्तियां जागृत होती हैं और धीरे धीरे आत्मा में शक्तियां बढ़ने लगती हैं। हमारे आत्मा में बहुत शक्तियां हैं, लेकिन आवश्यकता है उन शक्तियों को जगाने की, और वो काम केवल स्वमान ही करता है, उसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। जितनी आत्मा स्वमान के सिंहासन पर बैठती है, आत्मा में जो भी प्रतिभा है, जो भी शक्तियां हैं, जो भी क्षमता है, वो सारी जागृत होती है और हमारी स्थिति शक्तिशाली बनती जाती है। ये है जादू स्वमान में स्थित रहने की। बाबा ने एक बार कहा था, स्वमान शब्द को अगर धारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि स्वमान में स्थित रहते हैं तो सोई हुई शक्तियां जागृत होती हैं और बाबा से सहज ही हमारा कनेक्शन जुड़ता है और बाबा से शक्तियां प्राप्त करते ही रहते हैं, जिससे हमारा यह स्थिति का स्तर ऊंचा ही ऊंचा बनता जाता है। बाबा की एक चाहना है कि मैं हर एक बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। आत्मा रूपी जो मेरा बच्चा है उसको मैं राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। राजा अर्थात सिंहासनधारी और राजा अर्थात कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाला। तो केवल स्वमान के पॉइंट को बुद्धि में रखना पर्याप्त नहीं है, उसको बार बार लिखने से भी हमें उतना लाभ नहीं होता है, लेकिन स्वमान में स्थित रहना सीखे। कैसे रहेंगे? मैं आत्मा के साथ स्वमान जोड़ दो, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं, ये सिंहासन है, उस पर आत्मा बैठती है, राजा बैठता है। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं, जब इस सिंहासन पर बैठते हैं तो हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारा व्यवहार विश्व कल्याणकारी जैसा ही होता है। तो स्वमान के स्वरूप में स्थित रहना है। स्वमान हमारा टाइटल अनुभव करे। '19 मार्च '88 को ओम शांति भवन की स्टेज पर मैं बाबा से मिल रहा था पर्सनल, तो बाबा ने मुझे वरदान दिया, सदा विश्व परिवर्तक आत्मा हो। विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो। परिवर्तन शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है। परिवर्तन शक्ति के द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हैं और करते रहोगे। हर कार्य में परिवर्तन शक्ति को यूज करने वाले विश्व परिवर्तक आत्मा हो। ये वरदान मुझे बाबा ने 19 मार्च 88 में दिया था। और जब मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, इस स्मृति में टिकता हूं, एक सेकंड में मुझे परम धाम की फ्लाइट मिल जाती है। एक सेकंड में बाबा के पास बैठ जाता हूं। यह है सोमान के जादू कि सोमान से हमारी मन बुद्धि हल्की होती है, चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं, इसलिए सहज ही हम बाबा के पास जाकर बैठ जाते हैं। तो इसलिए सदा सोमानधारी बैठने का अभ्यास हमको बढ़ाते रहना है। दूसरी बात, मनोबल को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते रहें। बाबा ने पिछले सीजन में कहा है, अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय पूरा हो चुका है। अभी समय चल रहा है ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाने का, शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने का। ये समय की पुकार है। क्यों? क्या इसके पीछे राज है? हम बाबा के पास आए हैं आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए योगाभ्यास के द्वारा। कितने साल से कर रहे हैं भाई चार्ज, बताओ? कितने साल से कर रहे हैं? 40 ईयर्स से। 40 साल से कर रहे हैं, अभी तक बैटरी चार्ज नहीं हुई। मोबाइल की बैटरी 2 घंटे में चार्ज हो जाती है, ये बैटरी इतना समय क्यों ले रही है? क्यों ले रही है? क्योंकि जो थोड़ी सी शक्तियां हम जमा कर लेते हैं वो खर्च भी कर लेते हैं, बैलेंस नहीं रहता है। क्योंकि सारे दिन भर में कितने संकल्प हमारे मन में चलते हैं, कितने संकल्प व्यर्थ कहो जो भी कहो, उसके द्वारा आत्मा की ऊर्जा बहुत खर्च होती है। इसलिए 3 बातों को हमें चेक करना है, बार बार चेक करना है। मेरी अर्निंग कितनी है, मेरी कमाई कितनी है शक्तियों के, मेरी स्पेंडिंग कितनी है, मेरा खर्च कितना है शक्तियों का। तीसरी बात, मेरी सेविंग कितनी है। मैक्सिमम अर्निंग करना है तो ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास से या शक्तिशाली योगाभ्यास से ही संभव होता है। कमाई मेरी बहुत हो और खर्च मेरा बहुत कम हो। इकोनॉमी के अवतार हमें बनना है, स्वयं के लिए बहुत कम खर्च करना है, ताकि मेरी सेविंग बहुत अच्छी तरह से होगी, जिसके द्वारा मैं अनेक आत्माओं को शक्तियों का दान दे सकूंगा। कमाई जो शब्द है उसमें माई शब्द अंतर्निहित है। का माई, या होगी कमाई या होगी माई, माई माना माया। तो मुझे यही तात लगी रहे, मेरी कमाई बढ़ती रहे, मेरा स्पिरिचुअल इनकम बढ़ता रहे, माया को मुझे चांस नहीं देना है। इनकम 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 इनकम, कमाई कमाई कमाई। करोड़पति को स्वप्न में भी पैसा ही दिखाई देता है, धनी दिखाई देता है, तब वो करोड़पति बनता है, मेहनत करता है, रोडपति से करोड़पति बन गया। रेड़ी चला रहा था रोड पर, अभी 10 मंजिल का मालिक बन गया। लेकिन उसको पूछो कैसे बना, दिन रात एक किया, इतनी मेहनत किया, तब इतनी उपलब्धियां उसको हो चुके। इसलिए योगाभ्यास के द्वारा मुझे कमाई करना है, कमाई करना है, बस यही तात यही लात हमें सदा लगी रहे। योगी अर्थात प्रभु के पागल प्रेमी, उनको कुछ सूझता ही नहीं है, प्रभु को बिना, भगवान के बिना उनको कुछ सूझता ही नहीं, दीवाने बन चुके हैं वो प्रभु के। मधुबन में रहना, दो चार दिन रहना, सौभाग्य प्राप्त होना, ये बहुत बड़ी लॉटरी है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के ग्लोब में मधुबन ही ऐसा एक स्थान है जहां पावरफुल योग का अभ्यास कर सकते हैं, जहां ऐसे गहन योगाभ्यास करने के लिए हर प्रकार से सहयोग हमें मिलता है, उसका हमें मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। पार्टी में आते हैं, 1 घंटा 4 धाम करके चले जाते हैं, लेकिन इस भूमि पर 4 दिन रहने के लिए सौभाग्य मिलना बहुत पुण्य कर्मों की ये पूंजी है। तो शक्तिशाली योगाभ्यास को हमें बढ़ाते रहना जरूरी है, और उसमें भी मुरली में बाबा स्पष्ट कहते हैं, कितना मुझे याद करो भाई, कितना याद करो मुझे, कम से कम 8 घंटा तो याद करो। वैसे अगर हम गिनती करेंगे तो मुश्किल से 2-2.5-3 घंटा होता है, अगर हम चार्ट लिखे तो। ये 8 घंटे के पीछे राज क्या है, क्या राज है, क्योंकि जो चलते फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बाबा से कनेक्शन जोड़ते हैं, 8 घंटे में जो कमाई होती है ना, वो अपने लिए यूज होती है। बचत तब होती है जब उससे जास्ती हमारा योगाभ्यास होता है, तो जमा का खाता बढ़ने लगता है। और ये जमाना कैसा है, कैसा है ये जमाना, जमा ना, जमा होने ही नहीं देता है। माया हमें कितनी भटकाती रहती है, बुद्धि को मटकाती रहती है, लटका के रखती है, हमारी कमाई होने ही नहीं देती। लेकिन हम भी रुस्तम हैं, हमें भी उससे युद्ध करते हुए उससे जास्ती हमें कमाई करनी है, हमारा लक्ष्य हो दृढ़ता से। तीसरी बात, मनोबल को बढ़ाने के लिए पवित्रता का बल हमें बढ़ाते रहना है। पवित्र जो शब्द है ना, उसमें इत्र शब्द अंतर्निहित है, पवित्र इत्र, चरित्र इत्र, इत्र अर्थात सुगंध। जितना पवित्रता की शक्ति, चरित्रता की शक्ति बढ़ती है, दिव्यता की सुगंध हमारे व्यक्तित्व से चारों ओर सदा फैलती रहती है। पवित्रता का बल इस संसार में सबसे बड़ा बल है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, बुद्धि में मेरे एक बाबा सदा बसा रहे, कोई व्यक्ति वैभव न रहे। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति बाबा बताते हैं, मैं आत्मा ये आत्मा, भाई हो चाहे बहन हो, उसके ब्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखना है, दृष्टि में दिव्यता हमें लानी है, मैं आत्मा ये आत्मा, आत्मा आत्मा भाई भाई। बहन भाई की भी दृष्टि से ऊपर उठना है, बहन भाई की दृष्टि होने से शुद्ध प्रेम भी अशुद्ध प्रेम में परिवर्तन होने की संभावना हो सकती है, उससे भी ऊपर उठना है, मैं आत्मा ये आत्मा भाई भाई एक पिता की संतान। और उसके लिए हमेशा याद रखे, मेरा बाप ब्रह्मा जो है उसकी स्थिति का यादगार मधुबन में पवित्रता के स्तंभ के रूप में है। स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति, स्तंभ अर्थात अच्छल अडोल स्थिति। अपवित्रता के जहर को उखाड़ के फेंक दें, कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु के तरफ मेरा आकर्षण न हो, मेरा संसार एक बाबा हो बस, मेरे दिल की दुनिया में बस मेरा दिलाराम बाबा ही है, किसी को मेरे दिल तक पर बैठने का अधिकार नहीं है, मैंने भगवान को ये दिल तख्त दे चुका हूं। और माया कौन दो प्रलोभन के रूप में हमारे सामने बार बार आती है हमारे पवित्रता की परीक्षा लेने के लिए, कौन से प्रलोभन है? रूप और रुपया, ये दो माया के प्रलोभन है, रूप और रुपया। लड्डू दिखाती, आओ मेरे तरफ आओ, न हमें रूप के तरफ आकर्षित होना है न रुपया के पीछे आकर्षित होना है। सबसे सुंदर वो सत्यम शिवम सुंदर है, सबसे खजानदार जो है सर्वशक्तिवान परमात्मा है, उसी का मुझे आशुक बनकर रहना है। समझा? तो एकांत में बैठकर आत्मा की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाएं और आत्मा की दृष्टि को भी अच्छी तरह से बढ़ाएं। हमारी दृष्टि में दिव्यता आती रहे, साधारण शरीर हमें नजर न आए लेकिन दिव्य जो स्वरूप है आत्मा का वो हमें दिखाई दे, वो हमें अनुभव होता रहे, ऐसी दृष्टि में दिव्यता हमारे दिने दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। इतने सालों से हम पालना ले रहे हैं भगवान की, तो भगवान देखते हैं इसके जीवन में कितना परिवर्तन आया है, कितनी दिव्यता आई है, कितनी रूहानियत की शक्ति बढ़ी है, बाबा देखना चाहते हैं। पालना तो ले रहे हैं, पालना का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें बाबा को इस रूप से देखना है, रूहानी चेत की शक्ति को बढ़ाकर। समझा? जितना जितना पवित्रता का बल बढ़ता है उतना ऑटोमेटिक मन बुद्धि एकदम शांत और शीतल हो जाती है। माना कामाग्नि बुझ जाती है, शीतलता आत्मा में आने लगती है, क्रोधाग्नि कामाग्नि ये सारी शांत हो जाती है। हमेशा एक स्लोगन याद रखो, प्रभावित होने वाला प्रभावशाली नहीं बन सकता, प्रभावित होने वाला प्रभावशाली नहीं बन सकता, आकर्षित होने वाला आकर्षण मूर्त नहीं बन सकता। इसलिए मुझे किसी के प्रभाव में नहीं आना है, किसी के आकर्षण में नहीं आना है, बस भगवान के ही प्रभाव में और आकर्षण में मुझे रहना है। चौथी बात, मनोबल को बढ़ाने के लिए फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते रहना जरूरी है। हम बाबा के बच्चों ने हर कल्प फरिश्ता स्थिति के द्वारा मानवता की सेवा की है, उसकी यादगार विदेशों में जहां तहां एंजल्स ही एंजल्स दिखाई देते हैं, भारत में जहां तहां पर्यायी पर्याय यादगार में दिखाते हैं, क्योंकि हम बाबा के बच्चों ने ऐसे फरिश्ता स्थिति के द्वारा मानवता की बहुत सेवा की है। सल्वेशन आर्मी बनकर ये यादगार अभी तक चलती आ रही है। फरिश्ता फरिश्ता फर्श से नो रिश्ता, फर्श वासियों से फर्श से रिश्ता खत्म, उसको कहते हैं फरिश्ता। उसमें विशेष दो फरिश्ते की मुख्य विशेषता है। फरिश्ता अर्थात हड्डी मांस के शरीर के बजाय दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर अनुभव करना। मुझ आत्मा ने बहुत सुंदर चमकीली ड्रेस दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है और फरिश्ता के रूप में इस कर्म क्षेत्र पर मैं अवतरित हो चुका हूं। अठारह जनवरी के दिन ये मधुबन मधुबन नहीं रहता है तो क्या होता है? ऐसा लगता है सूक्ष्म वतन ही यहां आ गया, ये फरिश्तों की दुनिया यहां आ गई। हर एक अपने अंतर्मुखी होता है, लाइट के स्वरूप में रहता है, बाबा के प्यार में लीन रहता है। ऐसा लगता है चलते फिरते ये फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। ब्रह्मा बाबा जहां पर भी मधुबन में विचरण करते थे बाबा हमेशा फरिश्ता ही दिखाई देते थे। क्या रास्ता, बाबा के मकान में देह रूपी मकान में हमेशा आत्मा की लाइट जलती रहती थी, ये रास्ता उनके पीछे। कभी भी ये आत्मा की लाइट बुझी हुई नहीं रहती थी, हमेशा जलती हुई रहती थी। जितना देर तक आत्मा की लाइट जलती रहती है तो ये जो हाउस है लाइट हाउस अनुभव होता है, और जितना अनुभूति हमारी ये बढ़ती है तो ये हाउस माइट हाउस अनुभव होता है, लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति। हमें अनुभव होती है। चलते फिरते उठते बैठते ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा दिव्य प्रकाश पुंजधारी हूँ, भोजन पर जा रहे, आंगन में बैठे हैं, इधर जा रहे हैं, सबको खुद को फरिश्ता रूप में अनुभव करो और दूसरों को भी फरिश्ता स्वरूप में देखो। कितना सुंदर अनुभव होता है आप देखो। और दूसरी निशानी फरिश्ता की है, फरिश्ता अर्थात भगवान के साथ सभी रिश्ते अनुभव करना, सभी रिश्ते एक भगवान के साथ अनुभव करना। कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु के साथ नहीं। हाँ, क्या कहते हैं भाई, पारस सोने के अपने लोहे के साथ पारस को जोड़ते हैं तो क्या होता है, लोहा सोना हो जाता है। एक लालची ने सोचा कि कितना देर तक वो लोहे को पारस लगाते रहे, पारस ही चुना रहो ना, जितना जाए सोना बनाएंगे। कौन सा पारस है भाई, वो कौन सा पारस है? अगर वो पारस इस दुनिया में होता तो वो चोर जो बहुत बड़े पावरफुल चोर है ना, वो चुरा के पता नहीं कहां ले जाते। तो बाबा पारसनाथ है, पा रस नाथ, वो एक ही ऐसा नाथ है जिससे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। और उस पारस के साथ जो आयरन एजेड आत्मा है वो साथ में रहती है तो गोल्डन एजेड बन जाती है। आयरन एजेड आत्मा गोल्डन एजेड बन जाती है, उसके साथ रहने से ही, संघ में रहने से ही। चुरा लो ना उसको। इसलिए बाबा जो रसों का भंडार है, सर्व संबंधों का शकरीन है, उसके साथ हमें बुद्धि के द्वारा रहना है और उनके संग का रंग आत्मा पर लगाना है। संगम अर्थात भगवान के संग में रहना, यह है संगम युग की निशानी। नाम इसीलिए इसका संगम पड़ा है, भगवान के संग में रहने का युग संगम युग यह है। समझा? तो फरिश्ता स्थिति को बहुत अच्छी तरह से हमें निखारना है। कोई भी रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा को बंधी न हो, कोई भी सूक्ष्म रस्सी बंधन है, कोई भी रस रूपी रस्सी मुझे बंधी ना हो, मैं तो आजादी चाहता हूं। आजादी किसको कहते हैं? आ जा दी, आना जाना कर सके, जब चाहे इस पिंजड़े से निकल सके, जब चाहे इस पिंजड़े में आ जाए, उसको कहते हैं आजाद पंछी। संगम युग में मुझे आजादी चाहिए, गुलामी मुझे पसंद नहीं है। किसी ने पूछा मनुष्य के प्यार में और भगवान के प्यार में क्या अंतर है, एक ही वाक्य में बताओ। हाँ? भगवान का प्यार अर्थात आसपास में उड़ने वाला आजाद पंछी, मनुष्य का प्यार अर्थात पिंजड़े में रोता हुआ जकड़ा हुआ पंछी, ये है मनुष्य का प्यार और ये भगवान का प्यार है। कौन सा प्यार चाहते भाई? भगवान का प्यार चाहते हैं ना। सारा कल्प तो हम तो यही से पिंजड़े में फंसे रहे, जकड़ते रहे। अभी थोड़ा सा कल्प की अंतिम समय पर पहुंचे हैं, इसका भरपूर आनंद लेना है। बस बाबा मेरा संसार मुझे अनुभव करना है, बस। संसार में दो ही चीजें हैं, व्यक्ति और वैभव, तीसरी चीज नहीं है। व्यक्ति वैभव से जो प्राप्तियां होती हैं वो बाप से अगर करते हैं तो बाबा हमारा संसार बन जाता है। तो हमें बाबा को संसार के रूप में अनुभव करना है। और ये देखना है हमारे दिल का प्यार बाबा के तरफ ट्रांसफर जास्ती से जास्ती करना है। अमूल्य जो पूंजी प्यार की हमारे पास है वो हमें बाबा के तरफ ट्रांसफर करना है। क्योंकि जहां प्यार वहां बुद्धि की तार जुट जाती है, स्वतः ही जुट जाती है। जितना प्यार उतनी देर तक बुद्धि की तार जुटी रहती है, और जैसा प्यार वैसी बुद्धि रूपी तार जुटी रहती है। तो सारा मदार है प्यार पर। तो भगवान से प्यार करना सीखें, बस ये कला हमारे पास हो। दादियों के पीछे क्यों बाबा फिदा हैं? प्रकाश मणि दादी जी बाबा से मिल रही थी स्टेज पर बैठ के, क्या हो रहा है आंखों आंखों में चल रहा है, बाबा दादी को देख रहा है, दादी बाबा को देख रहा है, सारा संसार उनके प्यार को देख रहा है। एक दो के दीवाने थे, रग रग में उनके परमात्म प्यार था, इसलिए सारे विश्व में वो महान कहलाए। कोई डिग्री नहीं, कोई पर्सनालिटी नहीं, कोई भी दुनिया की प्राप्ति नहीं है, सिद्धि नहीं, लेकिन भगवान उनके पीछे पीड़ा है प्यार। प्यार से ही भगवान को बांध सकते हैं। इतनी ताकत प्यार में है। तो फरिश्ता अर्थात भगवान के साथ प्यार की लेन देन करने वाला और पांचवी बात जो है, मनोबल को बढ़ाने के लिए हमें ध्यान रखना है किसी भी आत्मा के प्रति हमारे मन में नेगेटिव भाव न हो। किसी एक भी आत्मा के प्रति नेगेटिव भाव न हो। बाबा ने कहा था अगर किसी एक भी आत्मा के प्रति नेगेटिव भाव है तो मनसा सेवा करने के लिस्ट से आप बाहर हो जाते हो। इतनी बड़ी बात, क्योंकि जिसके प्रति हमारे मन में नेगेटिव भावना होती है उसके प्रति नकारात्मक संकल्प या संकल्प का तूफान हमारे मन में चलता रहता है, जिससे आत्मा की एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। ये लीकेज है, इस लीकेज को बंद कर दो पहले। दो खतरनाक व्यक्ति हमारे रास्ते में नहीं होने चाहिए। खतरनाक शब्द यूज कर रहा हूं मैं, कौन से है भाई? वो जिससे हमारा बहुत प्यार है वो भी दुश्मन है, और जिससे बहुत घृणा है वो भी दुश्मन है। क्योंकि जिस समय एकांत में बैठते हैं दोनों में से कोई एक बुद्धि में टपक पड़ जाता है, भगवान की याद भूल जाती है। ये मुझे नहीं चाहिए मेरे रास्ते में, मेरा रास्ता साफ हो। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है पॉजिटिविटी का चश्मा हम पहने, हर एक आत्मा का आदि अनादि स्वरूप देखें और अंतिम फरिश्ता स्वरूप देखें तो हमें सबकी अच्छाइयां नजर आती है, सबकी विशेषताएं नजर आती है। सब में महानताएं हैं, सब में विशेषताएं हैं। कोई भी संसार में ऐसी आत्मा नहीं है जिसमें विशेषता नहीं है। ज्ञानी तो छोड़ो, अज्ञानियों को भी विशेषता है। मनुष्य जन्म लेना, प्राप्त होना भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कीड़े माकोड़े कितनी सारी योनियां हैं, उससे तो बढ़कर मनुष्य की योनि मिल गई उसको। कितनी महान आत्मा है वो। और सब में कमी है, कोई भी नहीं है जिसमें कमी नहीं है। तो मुझे कमी नहीं देखना है। जैसे मधुमक्खी हर फूल से क्या लेती है, मधु ही लेती है। मुझे मधुमक्खी बनना है, हर एक रूहे गुलाब से मधु ही लेना है। बहुत अच्छी विशेषताएं लेनी है। समझा? तो ये तो साधन ही हो गया। अभी तो दूसरी बात है, मनोबल को बढ़ाने के लिए इन 500 बातों पर ध्यान देना है। अभी दूसरी बात है, मनसा सेवा करने के लिए हमारे मन में हमेशा रहम दिल की भावना और दातापन की भावना होना जरूरी है। रहम दिल, कोमल दिल भी ना हो, कठोर दिल भी ना हो, लेकिन रहम दिल हो। किसी का दुख देखकर कोमल दिल होने से उसी में हम बह जाएंगे, रोना शुरू करेंगे। कोमल दिल भी नहीं बनना है, कठोर दिल अर्थात किसी के दुख को देखकर हम ऐसे निर्दय बने रहे, उसकी फीलिंग भी नहीं आए, वैसा भी कठोर दिल नहीं बनना है, लेकिन रहम दिल बनना है। किसी के दुख को अगर देख सकें, पहचान सकें, जितना हो सके हम सहयोग दें उसको, शांति शक्ति का दान दें, ये है रहम दिल आत्मा की निशानी। दाता के है बच्चे, तो रहम दिल भी भावना हो और दातापन की भावना हो। चेहरा हमेशा मुस्कुराता हो, मुस्कुराते हुए चेहरे से कुछ ना कुछ तो देते रहे हम, खुशी दे, शांति दे, प्रेम पवित्रता के भाव दे। कहीं अहंकार में आके एकदम चेहरा हमारा गुब्बारा रहता है, एकदम मटका हुआ लटका हुआ, तो अरे भगवान के बच्चे हैं, कुछ तो दो। जो भी सामने आता है उसको कुछ तो दो। खाली हाथ जा रहा है वो व्यक्ति आपके दर पर से, तो एक स्लोगन लिखो, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। भगवान ने इतना सुंदर चेहरा दिया है, उसको खिलाकर तो देखो, मुस्कुराहट चाहिए। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। बाबा का सत्य ज्ञान मिल गया, हमें सुख मिलने लगा। भगवान चाहता है मेरे बगीचे का हर रूहे गुलाब कैसा हो, खिला हुआ हो, हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। ये भगवान की चाहना है। वो माली है, माली एक, वो मालिक है। ये बहने भगवान है, ये बगीचे को सींचता है माली हर रोज, चाहता है मेरे बगीचे का फूल एक भी मुरझाया हो ना हो, हमेशा खुशनुमा हो, खुश खुशहाली जीवन में हो, हरियाली हो जीवन में हो। ठीक है, तो मनसा सेवा करने की तीन विधियां है, तीन तरीके हैं। मनसा सेवा करना अर्थात जो सोर्स बाबा है उसके साथ एक तरफ बुद्धि जुटी हुई हो, मन बुद्धि, एक तरफ लेना है दूसरे तरफ देना है, इसको कहते हैं मनसा सेवा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें जेब से कुछ नहीं खर्च करना है, इधर से लेना है बाबा से और इधर देना है मनुष्य आत्माओं को। और जितना ये बिजनेस करेंगे उतना हमें कमीशन ऑटोमेटिक मिलता है दुआओं का। समझा। तो पहला तरीका है आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहने द्वारा मनसा सेवा करना, बुद्धि रूपी तार बाबा के साथ जुटी हुई हो, परम धाम में हो या यहाँ हो, और आत्मा का आभा मंडल हमारा विशाल हो, बहुत दिव्य और भव्य हो, तो जहाँ हम गुजरते हैं, जहाँ हम विचरण करते हैं, हमारे प्रभावशाली आभा मंडल के द्वारा सुख शांति प्रेम पवित्रता के वाइब्रेशन होते ही फैले रहते हैं। मनसा सेवा ऑटोमेटिक जिस स्थान पर हम जाते हैं वो होती रहती है। कहते जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति, जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति। तो विशेष हमारा ध्यान हो बाबा से मेरी तार जुटी हुई है, जहां से मैं गुजरन होता हूं गुजरता हूं शांति प्रेम पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाता रहता हूं। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर लाइट के और माइट के किरणें फैला रहा हूं। ये हमने सेवा की है उसके भक्ति मार्ग में यादगार हैं। कोई भी बड़ी व्यक्ति आती है, महान व्यक्ति आता है, कहते भाई मेरे दुकान में कदम तो रखो, मेरे घर में कदम तो रखो। क्यों भाई, उसके पैर को कुछ सोना लगा है क्या? लेकिन ऐसी महान आत्मा जहां जाती है वो अपने प्रखर आभा मंडल के द्वारा कुछ वाइब्रेशन शांति प्रेम पवित्रता के वाइब्रेशन छोड़कर आती हैं, वो वाइब्रेशन आई वेला में उनको मदद करते हैं। इसलिए ये प्रथा अभी तक भी चलती आ रही है। दूसरी विधि, फरिश्ता स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करना। जब से ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तब से बाबा ने अव्यक्त स्थिति के द्वारा विश्व की सेवा की। सारे कोने कोने से आत्माएं जाग उठी और बाबा के बच्चे बनने लगे। तब से दादियां हमारी फरिश्ता स्थिति के द्वारा विश्व भ्रमण करती हैं और अनेक आत्माओं को शांति शक्ति दे रहे हैं। बैठे आप यहां हैं लेकिन आपका फरिश्ता स्वरूप जो है विश्व के ग्लोब पर अमेरिका के ऊपर भ्रमण कर रहा है, बाबा से कनेक्शन जुटा हुआ है और अनेक आत्माओं पर शांति शक्ति की शावर कर रहा है, वर्षा कर रहा है। अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर वो वर्षा हो रही है, उनको शांति शक्ति मिल रही है, ऐसी अनुभूति वो ऑटोमेटिक करते रहेंगे। जब फ्लड आता है ना तो फ्लड में एक समय क्या करते हैं, गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर भेजती है, हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता है और वहां से अनाज की पुड़िया पानी की बोतलें देती है। ऐसे विनाश के समय जब विनाश के बादल मंडराएंगे तो बाबा के बच्चे फरिश्ता रूप में उड़ते रहेंगे और अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति का दान देते रहेंगे जो उस समय समस्याओं में सफर करते रहेंगे। और जितनों को आप शांति शक्ति का दान करते रहेंगे उतनी उनकी दुआएं उतना इनकम आपका बढ़ता जाएगा। संगम युग में हमारी कमाई कौन सी है? दुआओं की। इसमें लोभी बनना है, लालची बनना है, बाकी सब लोभ छोड़ना है। जितना हो सके मेरी ये खजाना बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, क्योंकि आत्मा के साथ यही खजाना सारे कल्प में चलता है, उसी के आधार से हमें उज्जवल भविष्य प्राप्त होता है। दुआ 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 नहीं होगा तो दुआ होगा भाई, कहीं ना कहीं वो चलता रहेगा। बार बार हम ये अभ्यास करें। शानुमा शाम के समय कहते हैं ना देवताएं भ्रमण करते हैं, भाई देवताएं कौन भ्रमण करेंगे? ये हम भविष्य में देवताएं बनने वाले जो हैं वो नुमा शाम के समय फरिश्ता स्थिति के द्वारा विश्व भ्रमण करते हैं और अनेक आत्माओं को शांति शक्ति देते हैं। अभी तक यादगार चलती आ रही है। कितनी समस्याएं है, युद्ध में देखो, सुनामी में देखो, अर्थक्वेक में देखो, सुसाइड में देखो, कितनी आत्माएं शरीर छोड़ती हैं और कितनी अशांत होती हैं, उनको शांति देना शक्ति देना हमारा फर्ज है। शांति कहाँ मिलती है, किससे मिलती है, वो हमें पता है और किसी को पता ही नहीं। तीसरी विधि है विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करना। परम धाम में बाबा ज्ञान सूर्य हैं, आप बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा से लाइट माइट की किरणें आ रहे हैं और आपके द्वारा विश्व के ग्लोब पर वो पड़ रही है, शांति शक्ति की किरणें। विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा अनेक आत्माओं को शांति शक्ति देना। यह है वर्ल्ड वाइड बिजनेस करना। बस कनेक्शन हमारा जुड़ा रहे बाबा से, सोर्स के साथ, स्पिरिचुअल पावर हाउस जो बाबा हैं, उनसे हमें लाइट माइट लेनी है और सारे संसार की आत्माओं को देनी है। ठीक है, अभी मनसा सेवा करने की विधि भी हमने सीखी। अभी ये मनसा सेवा करने के साधन को कहां कहां यूज कर सकते हैं ये हमें देखना है। पहली बात, मनसा सेवा का प्रयोग किसी महान व्यक्ति को, वीआईपीस को, बड़े व्यक्ति को बाबा के सेवा में बुलाना है, मेहमान बनकर बुलाना है, तो उसके लिए मनसा सेवा का प्रयोग आप कर सकते हैं। बात 1983 की है, ओम शांति भवन बन चुका था उस समय, पहली वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, सबने मीटिंग किया। उस समय यूएनओ के जो जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रॉबर्ट मुलर जो हैं, उनको बुलाने के लिए उनको मैसेज दिया। उन्होंने कहा साहब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अटेंड नहीं कर सकता हूं। कोई बात नहीं, जानकी दादी जी बैठी कमरे में और बाबा से सकास लेकर उनको देती रही। कुछ घंटे दादी जी ने ये प्रयोग किया, बाद में वहां से रिस्पांस आता है कि मैं आपकी वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आ रहा हूं, और वो आ चुका था। तालियां तो बजाओ भाई, आ चुका था। किसी भी मनुष्य के संकल्प को पॉजिटिवली आपको परिवर्तन करना है तो ये मनसा सेवा में ताकत है उसके। मैं पर्सनल अनुभव सुनाऊ थोड़ा। मैं जब मधुबन में यहां आया 75 में नागपुर से, तो मधुबन को देखा तो मेरे मन में थोड़ी लालच उत्पन्न हो गई कि इतना सुंदर स्थान है, इस स्थान पर अगर हमें रहने का चांस मिला तो कितना बड़ा भाग्य होगा। तो दादी जी को पूछा, दादी जी मुझे यहां रहना है। दादी जी ने साफ कहा, मैं तुझे यहां रखने वाली नहीं हूं, तुम पढ़े लिखे हो, अपने सेंटर पर जाओ, सेवा करो। वीआईपी यहां क्या करोगे, ये तो स्थूल सेवा, यहां है भोजन बनाना, ये करना, धोना कपड़े, ये तो कोई भी करेगा। संस्था के चीफ 3 बार कहा, तो फिर तो कोई सोल्यूशन ही नहीं। मैंने कहीं सुना या पढ़ा, अगर आपके पास 8 घंटे का योगाभ्यास का चार्ट है और 90% थॉट लेवल प्यूरिटी है, तो आप किसी भी व्यक्ति के संकल्प को पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं। अब मैं 3 साल का बच्चा था, न योग लगता था, न पवित्रता वैसी थी, 22 साल की उम्र थी, यंग एज, वैसे ही नॉटी एज कहते हैं। मैंने कहा कुछ भी हो, मुझे ये दोनों उपलब्धियां प्राप्त करनी है। ये जो ट्रेनिंग सेक्शन है शांति स्तंभ के वो बाजू का, वो छत पर मैंने कई रातें पागल की तरह गुजारी है, केवल आत्मअभिमान स्थिति की अनुभूति के लिए और योगाभ्यास बढ़ाने के लिए। मेहनत करते करते 8 घंटे का योगाभ्यास मैंने जमा किया, 1-1 घंटे का प्राप्त करके, और बाद में आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते, पवित्रता की स्थिति को भी अच्छा अनुभव किया। फिर क्या किया, एक पूरी रात जागकर दादी को इस तरफ इमर्ज किया, मैं यहाँ हूँ, इधर शिव बाबा ब्रह्मातन में हैं, बाबा से लाइट माइट लेकर दादी जी पर वो डालता था। मैंने कहा बाबा दादी का संकल्प चेंज करो ना, मुझे छुट्टी नहीं दे रहे। पूरी रात मैंने प्रयोग किया, फिर मैंने सोचा अगर मेरा योग सही होगा तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। जहां अभी टेलीफोन एक्सचेंज है ना, वहां हमारा किचन था, तो दूसरे दिन मैं 10 बजे भोजन बना रहा था, दादी जी अपना पोस्ट का काम पूरा करके चक्कर लगा रही थी और बाजू में खड़ी होकर मेरे तरफ देख रही है। मैं अपनी मस्ती में भोजन बना रहा हूं, फिर नजदीक आई, आतम तुम नागपुर नहीं जाएगा? तो पहले तो क्या कहता था, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे माँ बच्चे को कहते हैं बेटा खाना खाएगा? नहीं खाऊंगा। जिद क्या करता है ना ऐसा। तो उस दिन मैं बड़े शांत मुद्रा में था, तो दादी कहते आतम तुम नागपुर नहीं जाएगा? मैंने तो कहा दादी जैसे आप कहेंगे ना वैसे मैं मानूंगा। मेरी मानेगा? हमें बोला हाँ जरूर मानू। अच्छा मैं भी तुम्हारी मानती हूँ, तुम यहाँ रह जाओ। ऐसे और दो तीन प्रयोग किए दादी को, लेकिन सीक्रेट है केवल योगाभ्यास योग बल को जानने के लिए। दूसरी बात, यज्ञ में किसी भी प्रकार का विघ्न अगर आता है तो उस विघ्न को हटाने के लिए मनसा सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। मां बात 1973 की है, दिल्ली में सबसे पहला मेला, बॉम्बे में तो 74 में हुआ क्रॉस मैदान में, 73 में दिल्ली में हुआ पहला स्पिरिचुअल फेयर, लाल किले के मैदान पर हुआ। लेकिन जैसा आधा मेला पूरा हो गया, आधा मेला चल रहा था, उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उस समय रशिया का प्रेसिडेंट हमें गेहूं देता था, तो रशिया का प्रेसिडेंट इंडिया में आया तो उसका वेलकम सेरेमनी करने के लिए लाल किले पर ग्राउंड पर उन्होंने आयोजित किया, तो हमें ऑर्डर मिल गई इस मेले को यहां से हटा दो। आधा मेला पूरा हो गया, अभी दादी वहीं थी, दादी ने कहा मेले का काम करने वाले सारे स्टॉप करो और सारी रात केवल तपस्या करो। सब सेंटरों पर दादी जी मैसेज पहुंचा दिया, रात भर आपको योग का तपस्या करना है, सकास ले लो बाबा से और गवर्नमेंट को सकास दो। फिर उस समय इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, गुप्तचर भेजे, देखो तो सही वहां क्या हुआ है। अच्छा आते ही दुर्गा देवी का मॉडल ओपनिंग मॉडल है, बाप रे इसको तो नहीं हटा सकते हैं, और इतना मेले का काम तो आधा पूरा हो चुका है। जैसे उसको सीक्रेट मैसेज पहुंचाया, दूसरे दिन मैसेज आता है 11 बजे, ठीक है अपना मेला का काम शुरू रखो, हम दूसरे मैदान पर प्रेसिडेंट का वेलकम सेरेमनी करेंगे। एक व्यक्ति नहीं, गवर्नमेंट को हिला देना कितनी बड़ी बात है। तो कोई भी विघ्न आता है ना, कहते करो तपस्या मिटे समस्या, बस ये स्लोगन बाबा का है, दादियों का भी है। समस्याओं को मिटाने का एक ही साधन है तपस्या, बस दूसरा कोई साधन नहीं है। तीसरी बात, मनसा सेवा करने का प्रयोग जो है, जब बहुत अर्थक्वेक बड़े बड़े आते हैं, होलसेल मौत होती है, उस समय आत्माएं अशांत होती है, उनको शांति शक्ति देने का सहयोग कर सकते हैं। बात 1985 की है, मैक्सिको में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, उसमें 1.5 लाख लोगों ने शरीर छोड़ा था। उन दिनों में गुरुवार के दिन मधुबन में भोग लग रहा था, मोहिनी बहन जी ट्रांस में गई और बाबा ने एक बड़ा दर्दनाक सीन दिखाया, देख नहीं सकते थे, इतना भयानक सीन था। एक पहाड़ी पर ये जो जिन्होंने शरीर छोड़ा था 1.5 लाख, उन्होंने को इमर्ज किया और वो इतने अशांत थे, वी वांट पीस वी वांट पावर। एक तरफ ये इमर्ज किया बाबा ने, दूसरी तरफ जो है ग्लोब पर बाबा के बच्चों को इमर्ज किया, बाबा ने कहा अपने खातिर नहीं लेकिन ऐसी अकाली मृत्यु वाली आत्माओं को शांति देने के लिए अपनी स्थिति को आगे बढ़ाओ, स्तर को आगे बढ़ाओ, क्योंकि ऐसी आत्माओं को शांति देना आपका फर्ज, आपके भाई है अशांत है, जिसने जबरदस्ती शरीर छोड़ा, जिसने जबरदस्ती प्रॉपर्टी छोड़ी, जिसने जबरदस्ती रिश्ते नाते तोड़े, कितनी वो अशांत आत्माएं होगी, तो ऐसी आत्माओं को शांति देना आपका फर्ज है। ऐसे समय हम जितना शांति शक्ति का दान देते रहेंगे उतनी दुआएं हमें ऑटोमेटिक मिलती है, बहुत कमाई कर सकते हैं। चांस लेना है, कहते मिले मौका तो मारो चौका नहीं चक्का सीधा, बाउंड्री के बाहर मैक्सिमम, सीधे हम मैक्सिमम, तो मौके हमें बहुत मिलने वाले हैं। लेकिन मौके मिलने के पहले हमें क्या करना है, साधन हमारे पास होना जरूरी है। अटूट साधना के द्वारा ये साधन मुझे जमा करना है तो भविष्य में मुझे बहुत चांसेस मिलने वाले हैं बेहद की सेवा करने के, बहुत कमाई करने का चांस मिलने वाला है। दूसरी बात, मनसा सेवा का प्रयोग स्वयं की सेफ्टी के लिए और साथियों की सेफ्टी के लिए जरूर कर सकते हैं। आगे चलकर बहुत समस्याएं हमारे सामने आने वाली हैं। बात 1993 की है, मैं यूरोप और अफ्रीका के टूर पर 11 देश को टूर पर गया था। तो जब मैं अफ्रीका में था तो अफ्रीका में केनिया से मैं दार एस सलाम जा रहा था बाय कार, ये आनंद भाई ट्रांसपोर्ट में है वो गाड़ी चला रहे थे। जैसे दोपहर को 2 बजे हम जा रहे थे तो जंगल से पास कर रहे थे, चिड़िया का आवाज भी नहीं था, इतना साइलेंस लगा। अचानक 2 पुलिस अफ्रीकन आए, उन्होंने हमारी कार रोकी, कार आपकी ओवर स्पीड है, स्टॉप योर कार, रोक दिया कार बाजू में। तो ये कोई ना कोई बहाना होता है, 1 साल पहले, केवल 1 साल पहले उसके स्थान से 1 किलोमीटर दूर अपने ही भाई बहनों के कार को उन्होंने रोका अफ्रीकन लोगों ने, और उनको रोक के ले उन्होंने ठोके थे। जैसी गाड़ी पंचर हो गई रुकी, उनको वहां रोककर भाइयों को मारा और उनको लूटा भी था। तो हमने कहा अभी ये कुछ नुकसान तो करेंगे, तो वो पुलिस वाले भाई से बात कर रहे थे। मैं उस समय बाबा से लाइट माइट लेकर उन पर डाल रहा था, बाबा इनकी बुद्धि चेंज करो। फिर जैसे बात करने के बाद में कार के सामने से वो मेरे तरफ आया, इधर यही मेरा ड्रेस था, यही ब्यास था। कहते ये कौन है, ये स्पिरिचुअल लीडर है, ये कहाँ जा रहा है, ये दार इस्लाम में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस है वहां स्पीच देने के लिए जा रहा है। अच्छा, तो जैसे देखा उसने, ठीक ओके 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 चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, गो अहेड, छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है आगे चलकर हमारी सेफ्टी के लिए औरों की सेफ्टी के लिए मनसा सेवा का साधन हमारे पास होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि मैं योगी बच्चों की तलाश कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा काम बाकी है, बहुत बड़ी सेवा बाकी है। कौन सी, इन 5 तत्वों को पावन बनाने की सेवा बाकी है, और वो योग्य बच्चे ही कर सकते हैं। और इसमें जितनी सेवा करेंगे उतना मेवा, उतनी उपलब्धियां आपको प्राप्त हो सकती है। भगवान के दिल की जो दुआएं हैं जितनी चाहे हम जमा कर सकते हैं इस बेहद की सेवा में हाथ बटाकर। अभी क्या होता है, हम सतयुग त्रेतायुग में देवताएं जो है पवित्र थे तो बहुत सुंदर ये सारा सृष्टि था, लेकिन जब हमारे मन में अपवित्रता जागृत हो गई सारी धरती हिलने लगे, और ये धरती का एक्सिस 60 हो गया, 90 से 60 हो गया, बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक हो गए, और ये जो माउंट आबू की जो पहाड़ियां है ना, ये नकी लेक जो है वो वोल्केनिक इरप्शन का प्लेस है, और उससे जो लावा रस निकलता है वो जब लावा रस ठंडा हो जाता है तो ऐसे ब्लैक स्टोन्स के रॉकी माउंटेन्स बन जाते हैं। तो अभी क्या है, हमारे अपवित्र संकल्पों का प्रवाह जो है इन तत्वों पर पड़ता है, क्योंकि ये तत्व एटम से बनते हैं, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हमेशा चलती रहती है, हमारे जो संकल्प चलते हैं उस संकल्पों का सीधा प्रवाह इलेक्ट्रॉन पर होता है। जब मन में पवित्र संकल्प चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन सही काम करता है, सारे तत्व सुखदाई होते हैं। लेकिन जब हमारे मन में अशुद्ध संकल्प क्रिएट करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव इलेक्ट्रॉन पर होता है, ये तत्व दुखदाई बनते हैं। अभी हमें पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करके फैलाकर इन तत्वों को पावन बनाना है, और जितना जितना हमें सेवा में हाथ बटाते जाते हैं उतना बाबा के दिल की दुआएं हमें मिलती रहती है। बहुत इसमें मार्जिन है, कोई इसमें बाउंड्री नहीं है, जितना चाहे आप इसमें सेवा में हाथ बटा सकते हैं। समझा? सिर्फ विश्व के ग्लोब को हमें इमर्ज करना है, बाबा से सकाश लेके पवित्रता की किरणें इस ग्लोब पर डालना है, या तो जैसे जो पांच तत्व होते हैं पांच तत्वों को देवियों के रूप में या देवता के रूप में इमर्ज करके बाबा से लाइट माइट लेना है, उनको देना है, भाई ये धरती देवी है, या ये जो अग्नि अग्नि है, या कोई भी समझो आकाश ये है, तो ऐसा रीति से इमर्ज करके बाबा से लाइट माइट लेके पवित्रता की शक्ति लेके उनको दे सकते हैं। इस तरीके से भी आप सेवा कर सकते हैं तत्वों के। तो इसलिए जो संगम युग में मनसा सेवा बहुत करता है, सारे कल्प में उनको मानसिक बीमारी नहीं आ सकती, क्योंकि उसने अनेक कमजोर आत्माओं को शक्तिशाली बनाया, अनेक आत्माओं की अपने मन के द्वारा सेवा की, इसलिए सारे कल्प में वो मनसा से शक्तिशाली होता है, कभी भी मानसिक बीमारी उसके पास नहीं आ सकती। समझा? तो इसलिए हमें यही सोचना है कि समय के अनुसार ये मनसा सेवा का साधन हमें जमा करना है। पिछले साल 25 अगस्त के दिन प्रकाशमणि दादी जी आई थी, दादी जी ने कहा था हर आत्मा मनसा सेवा कर सकती है, केवल आवश्यकता है इस अभ्यास को बढ़ाते रहना, जितना जितना बढ़ाते जाते हैं इतना उसमें हमारा कॉन्फिडेंस आत्मा का बढ़ता जाता है। अभी कोई भी बल्ब जलता है तो वो तो लाइट तो फैलाता है ना, वो कितना भी भले थोड़ा सा एरिया हो लेकिन लाइट तो फैलाता है ना। अभी 1000 वोल्टेज का बल्ब बाथरूम में रखेंगे क्या? कहाँ रखेंगे उसको? आंगन में रखेंगे। जितना वोल्टेज बढ़ता जाएगा उतना एरिया उसका सेवा का स्वतः ही बढ़ता जाता है। ठीक है? तो इसलिए मनसा सेवा का साधन मुझे अपने पास उपलब्ध करना है। ये बाबा ने गोल्डन चांस दिया है आपको यहाँ आने का, तपस्या के द्वारा खूब हमें शक्तियों का स्टॉक जमा करना है। समझा? अभी हम आधा घंटे के लिए ऐसा पावरफुल योग का अभ्यास करेंगे जो कभी हम भूलेंगे नहीं उस अनुभूति को। ठीक है? करना चाहेंगे? सभी चाहेंगे भाई? दीदी ने भी बोला था कि योग करेंगे तो सभी थोड़ा खड़े हो जाएंगे, तो बहुत देर से बैठे हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। तभी अलर्ट होकर बैठेंगे, एकदम चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे, पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट हो, सीधी हो, यज्ञ के शुरू में जब दादियां हमारी छोटी छोटी थी, गुलजार दादी जी सिर्फ 9 साल की थी, दादी प्रकाशमणि 15 साल की थी, तो जैसे वो यज्ञ में आती थी ना, तो बाबा उनको ओम ध्वनि कराते थे तो वो ध्यान में चली जाती थी। तो हमको तो चांस नहीं मिला भट्टी का, लेकिन उसकी अनुभूति जरूर हम कर सकते हैं। तो 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे हम, लेकिन विधि पूर्वक करना है, केवल मुख का बाजा नहीं बजाना है, सिर्फ एक आधे मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए आंखें बंद करके, केवल आधे मिनट के लिए तीसरे नेत्र से बिंदी को देखना है, बिंदी का साक्षात्कार करना है, बिंदी का दर्शन करना है आत्मा का, और उसकी अनुभूति हमें करना है केवल आधा मिनट के लिए, फिर खोलना है। 3 बार मेरे साथ, मैं बहन हूं भाई हूं, इस भान से परे हो जाएंगे और सभी ओम की ध्वनि करेंगे आत्मिक स्थिति में स्थित होकर। तो सभी एक साथ मेरे साथ कहेंगे चमकते हुए दिव्य ज्योति को देखते हुए सभी कहेंगे आत्मा का साक्षात्कार दर्शन करते हुए सभी बोलेंगे सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं। जो स्वयं के दिव्य स्वरूप को बिंदु स्वरूप को निराकारी स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूं। भाग्य विधाता भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते हैं। मैं शांत स्वरूप ज्योति बिंदु शांति के प्रकंप शांति के किरणें चारों फैल रही है। परम शांति की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा देह रूपी वस्त्र को छोड़कर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर जा रही हूँ। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूँ, जा रही हूँ। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूँ। ओह कितनी न्यारी और निराली है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर लिए। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके प्रकटि में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा अति स्नेहवरी दृष्टि से मुझे निहाल कर रहे हैं। स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में मैं फरिश्ता झूल रहा हूं। बाबा की बाहों में समा गया हूं। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो, जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। कभी मुझे पिता के रूप में अनुभव करो, छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में खेलो। मेरी अंगुली पकड़कर वतन की सैर मेरे साथ करो। आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। तो कभी मुझे टीचर के रूप में अनुभव करो, मुझे अपने टीचर पर नाज है, मेरे टीचर हर रोज मुझे ज्ञान के गुह्य राज समझाते हैं, ज्ञान के अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भरते हैं, जिससे मेरी बुद्धि दिव्य बनती जा रही है। लाडले बच्चे, कभी मुझे सद्गुरु के रूप में अनुभव करो, मेरे वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करो। मेरा वरद हस्त सदा अपने माथे पर अनुभव करो। मेरे सद्गुरु का वरदानी हाथ मेरे माथे पर है, बड़ा सुकून मुझे अनुभव हो रहा है। सारे दिन भर मैं उनकी ही छत्र छाया में चलती हूं, पलती हूं, वरदानों से भरपूर हो रही हूं और आओ। प्यारे बच्चे, कभी मुझे खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो, मेरे साथ बैठो, अपने दिल के समाचार की लेन देन मेरे साथ करो, स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करो, मेरे साथ खाओ, मेरे साथ चलो, मेरे साथ खेलो, सचमुच मैं कितनी न भाग्यशाली आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करके पारसनाथ के संग में रहकर स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। वहां मेरा भाग्य, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा, निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं, चमकती हुई ज्योति जा रही हूं, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी प्यारी है यह निराकारी दुनिया, चारों ओर सुनहरी लाल दिव्य प्रकाश हे प्रकाश है, शांति शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन, प्यारा घर, शांति धाम। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबल, मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा अपने दिव्य नेत्र से पावा के सुंदर छवि को देख रही हूं। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, बाबा के नैनों का नूर मैं आत्मा बन चुकी हूँ। मेरे दिल की दुनिया में बस मेरे बाबा ही बाबा हैं, बस मेरे बाबा ही बाबा हैं। बाबा मेरे संसार है, मुझे बाबा ही बाबा नजर आ रहे हैं। मेरी नजर एक बाबा पर ही एकाग्र है। बाबा मेरे सलोने साजन है, मैं आत्मा उनकी सलोनी सजनी हूँ। मेरे शिव साजन मुझ आत्मा रूपी सजनी का दिव्य गुणों के आभूषणों से श्रृंगार कर रहे हैं। मैं सजनी अपने शिव साजन को देख रही हूं। मेरा बुद्धि रूपी नेत्र ईश्वरीय नशे से भरपूर है। मैं आत्मा सजनी अपने शिव साजन के समीप जा रही हूँ, जा रही हूँ। उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गए हो। खुदा पर मैं सजनी फिदा हो चुके हूँ। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं प्यार के सागर के तले में डूब चुके हूँ, लीन हो चुके हूँ। मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ। मैं शिव मैं बन चुके हूँ, कंबाइन हो चुके हूँ। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तिशाली किरणें शिखर किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है, शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है। मैं आत्मा अथाह शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, और योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यहां, जो मैं आत्मा डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। पाना था सो पा लिया बाबा, बाबा मैंने आपसे बहुत कुछ शक्तियां प्राप्त कर ली बाबा, लेकिन मेरी एक छोटी सी और आस है बाबा, कि मेरे दिल रूपी मंदिर में मेरे सलोने शिव साजन के प्यार का दिया अखंड जलता रहे, बस जलता ही रहे, और मैं सजनी संगम की हर घड़ी अपने शिव साजन के ही महिमा के गीत गाती रहो, गुनगुनाती रहो, संगम के हर घड़ी उनके ही संग में उनके ही रंग में रंगती रहूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा, निराकारी दुनिया से वापिस इस साकारी दुनिया की ओर वाया सूक्ष्म वतन आ रही हूं, और इस साकारी शरीर में ब्रुकुटी के अकाल तख्त पर स्वमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा राजा स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। मस शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों फैल रही है। इस वायुमंडल को भी प्रकंपित कर रही है शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार है वैसे उनकी संतान मैं आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु यही मेरा मूल अस्तित्व इस संसार में है। मैं हूं देह से न्यारा केवल एक चमकता हुआ दिव्य ज्योति बिंदु सितारा मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है दमक रही है विभिन्न शक्तियों की किरणें मुझ मस्तक मणि आत्मा से चारों फैल रही है। चारों फैल रही है जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं वैसे मैं आत्मा भी इस विश्व के ग्लोब पर चैतन्य सितारा चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा हूं। दिव्यता की रोशनी फैला रहा हूं। मेरी बुद्धि रूपी तार डायरेक्ट परम धाम में ज्ञान सूर्य बाबा से जुटी हुई है। मुस आत्मा के आभा मंडल से पवित्रता की किरणें चारों फैल रही है। मुसा आत्मा के चौर एक सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश के लाइट का औरा मुझे अनुभव हो रहा है। मैं शांत स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। शांति के प्रकंपन इस वायुमंडल में फैल रहे हैं। परम शांति की अनुभूति हो रही है।
ओम शांति। जब वाणी की दुनिया से परे हो जाते, वाणी में आने को दिल नहीं कहता। बहुत सुंदर हम सभी ने अनुभव किया पांडव भवन के इस मेडिटेशन हॉल की गुफा में सब बैठे हुए हैं। और धन्यवाद है आत्म प्रकाश भाई जी का, दिन रात आप सेवा करते हुए अनेक आत्माओं को उड़ने और उड़ाने की सेवा में तत्पर है, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद है।